जवाब नहीं दिया। ये शिशुपाल हमारा है लेकिन सड़ा हुआ, एक कंस हमारा है, हम अपने अंग को जब देखते सड़ रहा है तो कटा देते, तो समाज में जो सड़े हैं उनको हमने काट के निकाला, बाकी सब में परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा इस रूप में सड़ेगा तो काट के फेंक दे। यही राम ने किया, यही किसने किया का आपसे तो प्रश्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अरे मैंने कहा क्या द फैक्ट आई एम टेलिंग यू, कहा नहीं आपकी बात ठीक। मैंने कहा उंगली क्यों काटी गई, है मेरी बड़ी प्यारी है, अब इस उंगली को कोई इस उंगली पर कोई थूक दे ना तो उसको थप्पड़ मारूंगा, और जब सड़ेगी कहूं डॉक्टर साहब जल्दी काटिए, और पैसा भी दूंगा, प्रेम से दूंगा। डॉक्टर कहता है 50,000, मैं कहता है 1,00,000 ले लो, लेकिन निकालो इसे, बताइए क्यों? इसलिए अपनी संस्कृति का अध्ययन करो मेरे प्रिय आत्मन, हमारी संस्कृति हमें कमजोर नहीं बनाती, हमें बलवान बना करके जो कमजोर है उनको बलवान बनाओ, और जो अन्यायी है उनका मुकाबला करो। हम जो प्रवचन कर रहे हैं आपको तैयार कर रहे हैं, आपको प्राणवादी नहीं बना रहे कि मुसीबत आए तो भाग जाओ। यही तो गीता का सबसे बड़ा उपदेश क्या है, तो सबसे पहली बात आप अपनी जगह बलवान बने, नहीं तो 6 जन्म तक आप मंदिर में बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। कहीं भी बैठे रहो, मंदिर का खंडन नहीं, आपकी कमजोरी की बात कर रहा, आपकी कमजोरी पर प्रहार कर रहा। अगर आप कमजोर हैं तो आपसे बड़े प्यार से कहता हूं, 33 करोड़ देवता भी अगर गुरु बन के आ गए, लेकिन अगर कमजोर हो तो 33 करोड़ देवता भी मदद करेंगे, लेकिन आप कुछ भी कर सकते नहीं। मैं कहता हूं कि आपकी आंख में मोतियाबिंद है, आप परमात्मा से कहो हे परमात्मा आज सूरज नहीं दिखाई पड़ता, परमात्मा कहेगा कि डॉक्टर परमात्मा का स्वरूप है, उसके पास जाकर अपनी आंख ठीक कराओ, इस परमात्मा को गाली मत दो कि सूरज तू कमजोर हो गया। आप कमजोर हो गए, हम लोग कितने कमजोर हैं, हमारे और सूरज के बीच में जब बादल आ जाता है तो कहते हैं महाराज जी बादल ने सूरज को ढका, आदमी बहुत कमजोर है। मनोविज्ञान का दाल लो, आप कहते हो बादल सूरज को ढका, मनोविज्ञान कहता है अरे प्यारे मनुष्य बादल तुझे ढका है, उस सूरज को क्या ढकेगा, बादल तुझे ढका, थोड़ा इंतजार कर और देख फिर सूरज चमकता कि नहीं, अगर बादल सूरज को ढक लेगा तो फिर तो बादल बड़ा हुआ काहे के सूरज बड़ा हुआ। यही आप ढके हुए, और अगर आप कि आंख अपनी जगह ठीक है स्वस्थ है तो सूरज तो क्या दीपक भी राह दिखाएगा, सबकी मदद मिलेगी, कहीं भी जाओ तो प्रकृति से मदद लेने के लिए आपका बलवान होना जरूरी है। साधना में भी परमात्मा की मदद के लिए आपके मन का बलवान होना बहुत जरूरी है। जब मेरे साथ मेरे परमात्मा है और हम परमात्मा का अंश हैं, बेटे हैं, तो किस चीज से घबराते हो, दुखों से घबराते हो, विपत्ति से घबराते हो, अरे इसका स्वागत करो बिना पीड़ा के। ये बात थोड़ी समझाऊंगा, मैं मर्यादा में बोलूंगा और आप समझेंगे, बड़े प्यार से कहूंगा और वैज्ञानिक आधार पर कहूंगा, केवल मेरा इशारा समझो। मर्यादा में पहला इशारा यह, लकड़ी में अग्नि है लेकिन जब फ्रिक्शन होगा घर्षण होगा तो अग्नि प्रकट होगी। एक वैज्ञानिक उदाहरण दे दो फिर जो इशारा करूंगा आप समझ जाएंगे। पानी के एनालिसिस कीजिए तो आम भाषा में क्या है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। आपके पास हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है लेकिन विज्ञान क्या कहता है, दोनों के मेल से जब फ्रिक्शन होता है तो पानी बनता है, नहीं तो रखे रहो हाइड्रोजन, रखे रहो ऑक्सीजन, बोलते रहो H2O। तो आपका विज्ञान भी कहता है कि पानी की एनालिसिस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, साधारण भाषा दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी विज्ञान कह रहा है वेदर द फ्रिक्शन देन देयर द क्रिएशन। अब यही शायद से करूंगा, हमारे माता पिता मिले आप समझिए, फिर माता पिता फ्रिक्शन का होगा। अगर मेरी माँ में या पिता में कमजोरी होती तो आरोपण मेरा नहीं होता गर्भ में, कुछ समझने की बात। जब आप गर्भ में आए उस समय आप अकेले तंदेरे, अब यही बात आपको समझाना चाहूंगा, परमात्मा वाली बात, या इशारा मेरा समझिए। गर्भ में केवल आपकी माँ ने आपकी मदद की, पिता तो केवल मदद किया, लेकिन गर्भ की रक्षा, अब आपसे यही कहता हूं, इस धरती के माता पिता हमें गर्भ में लाए, गर्भ है अंधेरा, फिर समझाऊंगा कि मैं क्या कहना, गर्भ है अंधेरा, हमारी माँ ने 9 महीने तक मुझे संभाल कर अंधेरे में रखा, और 9 महीने बाद जब प्रकट होने का समय आया तो कितनी प्रसव की पीड़ा को सहन किया। पहले समझ लो, जितने भी धरती से आकाश तक गए हैं, विज्ञान कहता है कहीं भी पैदा हुए, राम की तरह कि कृष्ण की तरह, अब्दुल कलाम की तरह कि सत्यवीर रमन की तरह, कि विक्रम भाई सारा भाई की तरह, कि विवेकानंद की तरह, कि मनीषानंद की तरह, कि महावीर की, बुद्ध की तरह, कि आपकी तरह, किसी तरह, सबकी बात जा विचार कीजिए। बलवान आदमी जब घर्षण फ्रिक्शन संघर्ष, किसके जीवन में संघर्ष नहीं आया, उस बात को मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। मेरे पिता या मेरी माँ बीमार होती, बस आगे कुछ नहीं कहना चाहता, दोनों अपनी जगह बलवान थे। यहां मैं कहता हूं कि हमारा परमात्मा बलवान है, लेकिन हम कमजोर हो गए। दूसरे शब्दों में बड़े प्यार से कहूंगा, मैं अपने ऊपर लेता हूं, मेरा जमाई स्वस्थ है, मेरी बेटियां स्वस्थ है, इसलिए मां नहीं बन पा रही, शक्ति का प्रकट जो करना चाहती नहीं कर पा रही, मेरा इशारा समझो, परमात्मा बलवान है। ये जीव एक दुल्हन है, एक नारी है, इसमें कोई कमजोरी है कि जो हम अपने अंदर शक्ति का प्रकट करने में असमर्थ हो रहे, बात को समझिए। संघर्ष कौन करेगा, बलवान आप कहीं भी जन्मे, फिर अंधेरा आपका विज्ञान भी कहता है। ये जितने पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं छोटे या बड़े, विज्ञान क्या कहता है, इनकी जड़ जितने अंधेरे में नीचे जाएगी उतना पेड़ ऊपर जाएगा। यही याद रखिए, जब समाधि की बात आती है तो जा आप देख ली, आप करोड़पति हैं, नींद कब आएगी, सब भूल कर जब आप अपने में जाएंगे बिना साधना के, और साधना के द्वारा ही जब आप अपनी गुफा में अंदर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद बात करता हूं, पहले एक व्यवहारिक बात समझा दूं, अंधेरा आप अंधेरे में अकेले हैं, लेकिन वहां एक कोई मदद कर रहा है, कौन, आपकी माँ। इसी तरह से पहले अंधेरा ले लो कि घर्षण के बाद आपको अकेले अंधेरे में जाना पड़ेगा नीचे, लेकिन याद रखो बड़े प्यार से, जैसे गर्भ में माँ रक्षा करती है, ऐसे अंधेरे में भी कोई रक्षा कर रहा है जिसे परमात्मा कहा। क्यों घबरा गए, अब फिर प्रकट होना, मेरी माँ ने प्रसव की पीड़ा को सहन किया तो प्रकट हुए, पीड़ा के बाद ही जन्म होता है। आप अपने अंदर कोई शक्ति को जन्म देना चाहते हैं तो पहले पीड़ा है, वैज्ञानिकों ने कह दिया, पीड़ा को जो स्वीकार करेगा, पीड़ा को जो पुरस्कार मानेगा, वही अपने अंदर, चाहे वो राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, कोई नाम किसी के नहीं लेता, कोई अमीर घर, कोई गरीब घर, इस पीड़ा को जो स्वीकार करेगा वही एक दिन सर्वोच्च आसन पर विराजमान होकर दुनिया उसे पूजेगी माने। चाहे आपकी बात हो मेरी बात हो, एक विवेकानंद की बात हो, हमारा देश गुलाम है। धर्म सभा में गए शिकागो, कोई समय नहीं दे रहा था, कितनी लाचारी थी। उनकी बातों में प्रभाव देख करके एक प्रोफेसर ने 5 मिनट दिया। वहां नियम था भाई, अपने समय में से दे सकते हो। उसको आधे घंटे मिला था, कहा मैं 5 मिनट इसको डोनेट करता हूं, देता हूं। और 5 मिनट का भारत की भूमि हुआ है कि 5 मिनट के चमत्कार ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आप अपना प्रदेश नहीं हिला सकते, अपना भरूच नहीं हिला सकते, आप किस मिट्टी के हैं? या सोचो तो सही, विचार तो करो इनका उदाहरण। लेकिन कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी, या विचार कर। अब फिर प्रकट होना, मेरी मां ने प्रसव की पीड़ा को सहन किया तो प्रकट हुए। पीड़ा के बाद ही जन्म होता है। आप अपने अंदर कोई शक्ति को जन्म देना चाहते हैं तो पहले पीड़ा है। वैज्ञानिकों ने कहा दिया, पीड़ा को जो स्वीकार करेगा, पीड़ा को जो पुरस्कार मानेगा, वही अपने अंदर, चाहे वो राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, कोई नाम किसी के नहीं लेता, कोई अमीर घर कोई गरीब घर, उस पीड़ा को जो स्वीकार करेगा वही एक दिन सर्वोच्च आसन पर विराजमान होकर दुनिया उसे पूजेगी माने। चाहे आपकी बात हो मेरी बात हो, एक विवेकानंद की बात हो, हमारा देश गुलाम है। धर्म सभा में गए शिकागो, कोई समय नहीं दे रहा था, कितनी लाचारी थी। उनकी बातों में प्रभाव देख करके एक प्रोफेसर ने 5 मिनट दिया। वहां नियम था भाई, अपने समय में से दे सकते हो। उसको आधे घंटे मिला था, कहा मैं 5 मिनट इसको डोनेट करता हूं, देता हूं। और 5 मिनट का भारत की भूमि हुआ है कि 5 मिनट के चमत्कार ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आप अपना प्रदेश नहीं हिला सकते, अपना भरूच नहीं हिला सकते, आप किस मिट्टी के हैं? या सोचो तो सही, विचार तो करो इनका उदाहरण। लेकिन कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी, या विचार कर। स्वामी रामतीर्थ की, शंकराचार्य जी की, संत ज्ञानेश्वर की, अरे किसी का भी लीजिए। और हम आप पता नहीं 150 बरस में क्या डाल दिया गया। तुम्हें तकलीफ हो तो भगवान के पास जाओ, हे भगवान तुम तकलीफ उठा लेना। और जिस भगवान की पूजा करते उसका जीवन नहीं देखते। आप हनुमान का पूजा करते हो और कहते हैं हनुमान तुम तकलीफ उठा लेना, तुम्हें कुछ हो मुझे कुछ नहीं हो। बस ये अंग्रेजों ने हमें बहुत मिस कर दिया। तुम राम का नाम लो, हनुमान का नाम लो, ये तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। स्वयं वो मंदिर में बैठे हनुमान जी का जीवन देखो, राम का जीवन देखो, किसका जीवन देखो, गांधी का जीवन देखो, जा विचार तो करो। ये आपको बता रहा हूं, आप जीवन में कोई शक्ति प्रकट करना चाहते हैं तो थोड़े दिन अंधेरे में जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन याद रखो वहां भी तुम्हारी कोई मदद कर रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। करेगा, नेचर करेगी, कुछ भी होगा। तो जितना अंधेरे में जाओगे अर्थात व्यवहार, जितना दुख सहन करोगे उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। राम की घटना क्या, एक बाद एक घटना, एक बाद एक घटना। विज्ञान कहता है हर चोट नई शक्ति को जन्म देती है। एक बार ताली बजी, बजती रही, हर चोट बढ़ती जाएगी। राम की जो कथा है, एक चोट के बाद चोट, वनवास का होना, सीतारण होना, युद्ध, ये सब पांडवों की भी यही कथा है। अब यही एक पत्थर में से मूर्ति बनाते होते, एक बार हथौड़ी लगने से बनता है, 3 महीने तक चिजलिंग होती है। तो आप पर भी कुदरत बड़ी मेहरबान है। याद रखो मेरे प्रिय नर हो कि नारी, अगर आप पर पीड़ा आती है तो परमात्मा आपको आसमान तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए पीड़ा को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये महाराज जी पीड़ा क्यों आती है? अरे आज मनोविज्ञान कह रहा है, विज्ञान कह रहा है कि जिसके जिसने पीड़ा को नहीं स्वीकार किया उसका जीवन भी आसमान तक नहीं पहुंचा। कहीं भी जन्मा कैसे हो, तो पीड़ा कौन स्वीकार करेगा? बलवान, कमजोर आदमी नहीं स्वीकार कर सकता। अब यही सारी बातें जो है समर्पण की, स्थिरता की, प्रबलता की, अब जो विषय है उस पर आ जाए। ये इतनी जबरदस्त भूमिका क्यों बांधनी पड़ी? खेत में एक दिन में थोड़े गेहूं डालते हैं, पहले साफ करना पड़ता, पानी डालना पड़ता, तैयार करना पड़ता, फिर रखवाली करनी पड़ती। आज जिस बगीचे के लिए हमने रखवाला रखा है कि बकरी ना अंदर जाने दो, 5 साल के बाद उसी में मैं ऊंट और हाथी बांधूंगा, आज बकरी नहीं जाने देता। ये सारे नियम आपको आसमान तक पहुंचाने के लिए हैं। जब आप ऊंचे हो जाएंगे तो जो बोलेंगे करेंगे, जो अनुभव होगा वही शास्त्र हो जाएगा, बाकी शास्त्र पढ़ते रहो, पेड़ के नीचे कुछ होने वाला नहीं। अब उसी नियम में अंदर की शुद्धि की बात, उसी सिलसिले में हमें हर जगह, आप हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई, अगर अच्छी बात से जुड़ना चाहते हो, अगर जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो अपनी अंदर जो हिंसा की बात है उसका रूपांतर कर सकते हो। ये हाथ से जो थप्पड़ मारते हो हाथ जोड़ भी सकते हो, जो किसी को दबाते हो अच्छा विचार आए तो उठा भी सकते हो। ये हाथ किसी को दबाता है तो विचार अच्छा है तो उठा भी सकता है। तो मेरे प्रिय आत्मन, मैं किसी तरह आपको कमजोर नहीं बताऊंगा, आपके अंदर किसी तरह कमजोरी के प्रति किसी का प्रेम नहीं है। एक बार मुझसे पूछा गया, वहां कवि वगैरह बैठे थे, कहे मनीषानंद आपका दुश्मन है कोई दुनिया में? मैंने कहा है। कहते कौन? मैंने कहा अज्ञान, अंधेरा, कमजोरी, ये मेरे दुश्मन है, इनको मार मारना। मेरे शिष्यों में अगर कमजोरी है तो आपका दुश्मन नहीं, वो आपकी कमजोरी का दुश्मन है। आप अंधेरे में बैठे हैं, मैं अंधेरे का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अंधेरे में बढ़ रहे हैं कि सत्यानाश कर रहे हैं वो देख रहा हूं। अंधेरा तो प्रकाश तरफ ले जाने के लिए प्रक्रिया है। अगर आप एकांत में हैं, एकांत में आप योगी हैं कि भोगी हैं वो देखना चाहता हूं, बाकी एकांत खराब चीज नहीं है। आप जो भोजन करते हैं उससे शरीर ठीक रहता है कि बिगड़ता है? मैं भोजन के विरोधी नहीं, लेकिन जिस भोजन करने शरीर बिगड़ता है, बिगड़ता है उसका विरोधी। कभी लोग कहते हैं अच्छा है, तो अंधेरे से, अज्ञान से, कमजोरी पर मेरा प्रहार है, आप पर प्रहार नहीं। आप हैं ही नहीं कमजोर, आप अपने को मान बैठे हैं कमजोर। जो मान बैठे हैं उसी को निकालता। अगर जन्म से कमजोर होते, प्यार करो, प्यार से बोलो, अगर जन्म से कोई गीदड़ है तो उसे शेर नहीं बनाऊंगा, लेकिन शेर गीदड़ बन गया इसलिए उसको शेर बना। परिस्थिति बस सुन करके देख करके, कागले को मैं हंस नहीं बना सकता, लेकिन हंस कागलों के साथ रह के कागला जैसा समझ, कागला जैसा हो गया है, वो जो कागला जैसा है उसको कहता तू हंस है, तू हंस है, हंस हो जा, कागला जैसा ना। यहाँ कोई कमजोर नहीं है, लेकिन परिस्थिति बस हम लोग अपने को कमजोर मान, आप अपने कमजोर मान रहे, वो कमजोरी निकालने के लिए ही ये प्रवचन आपके सामने। आप अपने मन में किसी के लिए भी गलत विचार न करें। ये वैज्ञानिक भी कह रहे हैं प्रियात्मन कि पशु पंछी इतना प्रदूषण नहीं पैदा कर रहे हैं जितना आदमी दूसरे के लिए गलत सोच करके, गलत देख करके समाज में दूषण पैदा कर रहा है। जहां विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने मन में से, मैं सारी बात बाद में क्लियर कर, लेकिन अभी मेरी बात समझिए, मन में भी सपने में भी किसी के लिए गलत विचार नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक गलत विचार है तो ये आप अपनी हिंसा कर रहे हैं, अपना सत्यानाश कर रहे हैं। आप तो पवित्र हो, आप तो शुद्ध हो, आप तो शिवम बोलते हैं, स्वम बोलते हैं, मैं तो राम का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, आप बोल रहे हैं। या विचार कीजिए, आप के पास 100 लीटर दूध है, आप जहर अपने ही दूध में डाल रहे हैं, तो आपका ही दूध अगर जहर हो गया तो पड़ोसी को तो मारेगा, लेकिन आप भी पिएंगे तो आपको भी तो खत्म करेगा। ये हाथ का नाखून अगर बढ़ा है तो पहले आपका नुकसान करेगा। बुद्धि अगर टेढ़ी है तो किसका विनाश होगा? रावण की बुद्धि टेढ़ी है, किसका विनाश हुआ? रावण का हुआ। कंस की बुद्धि टेढ़ी है तो किसका हुआ? इसलिए जाइए इसी बात को। अष्टावक्र की बात लीजिए, आप जानते हैं, मैं तो केवल मनोवैज्ञानिक इशारा करूंगा। जनक की सभा में आए, उच्च विद्वानों ने उनके शरीर को देखकर हंस दिया। मैं सारी बात में बता के जो मूल बात बताना चाहता हूं, कहानी तो ऐसा कुछ, लेकिन यहां पठित समाज है, वहां पर अष्टावक्र ने क्या कहा? शरीर से टेढ़ा होना ये समाज के लिए खतरा नहीं है, लेकिन आप लोग शरीर से सुंदर हो, लेकिन आपकी बात से पता चलता है कि बुद्धि के टेढ़े हो। याद रखो, शरीर से टेढ़ा होना समाज का खतरा नहीं है, लेकिन जो बुद्धि से टेढ़ा हो जाता है खुद के लिए और समाज के लिए खतरा है। कितनी ऊंची बात! उनके शरीर को देखा, वहां बहुत कुछ है, इस समय जरूरत कहने की नहीं, केवल इशारा कर रहा। एक आदमी की बुद्धि टेढ़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर बैठेगा। इस पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने बहुत सुंदर कहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, सब अच्छे विद्वान बैठे हों, सब अच्छे विद्वान बैठे हों, एक पागल आदमी टेढ़ी बुद्धि वाला गलत बोलने वाला सब अच्छे विद्वानों को सारी रात परेशान कर सकता है, लेकिन सब विद्वान एक टेढ़ी बुद्धि वाले को शांति से नहीं बैठा सकता। एक टेढ़ी बुद्धि वाला सौ को परेशान करेगा, लेकिन सब अच्छे लोग एक टेढ़ी बुद्धि वाले को ठीक नहीं कर जब तक खुद न सुधरे। या विचार कीजिए, यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं शरीर से टेढ़ा हूं लेकिन बुद्धि से नहीं, और आप लोग शरीर से सुंदर हो लेकिन बुद्धि से टेढ़े हो, ये समाज के लिए खतरा। यही मैं आपसे कहूं, आप यहां जितने बैठे हैं सुंदर भी हो और आपकी बुद्धि भी सुंदर है, जहां तन और बुद्धि विचार सुंदर हो जाए यही तो रामकृष्ण का रूप है, दूसरा क्या स्वरूप? या विचार कर, भले आप चेहरे से सुंदर नहीं लेकिन विचार से तो सुंदर बनो। विचार की पूजा होती, क्योंकि मनोविज्ञान क्या कह रहा है? हनुमान की पूजा चेहरे से नहीं है, गणपति की पूजा चेहरे से नहीं है, शक्ति और विचार से है। तो आपका चेहरा कैसा भी है लेकिन पूजा शक्ति की होगी, चेहरे की नहीं। लेकिन कहता हूं तन और मन, तन और मन विचार, ये दोनों अगर ठीक रहे तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर कहना क्या? लेकिन तन में अगर खोट बनाए तो भी विचार से आपकी पूजा होगी, और विचार के मालिक आप हैं। तो सबसे पहले कुछ भी हो जाए, सुन करके, देख करके, पढ़ करके, किसी के प्रति मन में निंदा का भी भाव नहीं आना चाहिए। किसी को हल्का मत मानो, मनोविज्ञान कहता है अगर किसी के हाथ में गुलाब का फूल दोगे तो पहले गुलाब का फूल आपके हाथ में आएगा, सुगंध आपके हाथ में आएगा। अगर आप किसी पर कीचड़ फेंकोगे तो कीचड़ भी पहले आपके हाथ में आएगा। अगर निंदा करते हो तो पहले आप गिर गए, आपका पतन हुआ। इसलिए जब अहिंसा की बात आई, और बाद में सब ले लूंगा, मेरे प्रिय आत्मन इसके मालिक आप हैं। क्यों किसी का बुरा सोचते हो? और खुद विज्ञान कहता है ये विचार एक्शन से रिएक्शन साथ इक्वल एंड अपोजिट। आप एकांत स्थान में गए, आप कहते तू अच्छा है तो यही वापस ध्वनि होगी तू अच्छा है, आप कहते तू बुरा है तो यही तू बुरा है, आपका जो एक्शन वही तो रिएक्शन है, क्यों रो रहे? या विचार करो। इसलिए एक एक से कह रहा हूं, ये जिंदगी 100 साल से ज्यादा की नहीं है, जहां से आए वहां चले जाओ, लेकिन जब जाओ तो संतों की तरह जाओ। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप लोग जब 100 साल गया है, 80 साल, 60 कुछ भी, आप लोग जाते हैं तो मुंह खोल के जाते हैं, गृहस्थी जाता है तो ढक के जाता है, इस पर आपका क्या विचार है? मैंने कहा मैंने इतने अच्छे काम किए हैं कि परमात्मा के पास जाने में खुशी हो रही कि मेरा पिता मेरा परमात्मा मेरा काम देख के खुश होगा, और तुमने ऐसा गलत काम किया है कि परमात्मा पास जाने के लिए तुम्हारे ऊपर जो है कफन डाल दिया गया, तुम शर्मा रहे हो इसलिए कफन डाल। पूछते हैं लोग, जवाब देता तो तुम शर्मा गए हो कि बाप के पास कैसे जाओ, आप गलती करते हो बाप के पास जाते हो ना शर्मा, वो भी अपना है, हम लोगों ने अपना काम किया अच्छा किया इसलिए नहीं शर्माते। एक विचार, बाकी मेरा विचार सुनिए तो बताऊं, जब हम जन्मे तो जिस कपड़े पर हमारी मां ने हमें लिटाया, गरीब थी कि अमीर थी, छोड़ी करोड़पति घर के आप थे कि गरीब घर के थे, हम आप जब जन्मे तो जिस कपड़े पर हमें आपको प्रथम सुलाया गया उसमें भी जेब नहीं थी और अंत में भी जेब नहीं रही थी, ये बीच में जेब का झगड़ा बहुत हो गया। जब जन्मे तो उस कपड़े में भी जेब और अंत में कफन में भी जेब नहीं रही, तो ये जेब का झगड़ा ही क्या, जब लेकर नहीं आए लेकर नहीं जाएंगे तो इसका झगड़ा क्या है, मेरा दे दो इसका दे दो उसका दे दो, क्या करते कहां पड़े हो। मैं तो हर से कहता हूं, हर अपने शिष्य से कहता हूं, हमें किसी का गिरा हुआ पैसा नहीं उठाना है। मैं तो परमात्मा से कहता हूं, मेरे जितने शुभ चिंतक हैं मेरे मानने वाले मेरे से, हे परमात्मा इनकी जेब में इतना दो कि इनकी जेब से गिरे और पता नहीं चले दुनिया उठाए, हमें किसी का गिरा हुआ पैसा नहीं उठाना, हमारा कोई खा जाए हम किसी का नहीं खाएंगे, बस हम किसी की मदद करें, हमें किसी की मदद जरूर न पड़े, ये प्रेम से कहा बड़े भाव से कहा, हमारा हर शिष्य हाथी बने, हाथी खाता है गिरता है तो कीड़ियां खाती है, हाथी से के मनोवैज्ञानिक हाथी से किसी ने कहा कि तेरा कुछ भाग कीड़ियां खा जाती हैं, कहा गिरता है मुझे पता नहीं चलता कौन खाता है, वो खाने की जरूरत नहीं खाने। एक आदमी मंदिर बना रहा है, किसी ने कहा महाराज कुछ लोग खा रहे हैं, मैंने कहा कि मंदिर में प्रसाद खाने चूहे बिल्ली आते हैं, वो आदमी चूहा बिल्ली खाने दो लेकिन तू मंदिर बना, उम्र के मंदिर का चूहा बिल्ली बनेगा, अभी ऐसे खाता है चूड़ा के फिर चूहा बिल्ली बन के खाएगा, चिंता मत, लेकिन तू अच्छा काम क्यों छोड़ता। मैं सच आपसे कह, यहां जितने बैठे सबके लिए मैं तो यहां तक बताऊंगा आपको, एक बार मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने इतने कहा, जब मैंने अपने को समझा मेरे से अलग कौन है, लेकिन जो सामने उपस्थित है उनको तो नम्रता से कहूंगा, मैं आपसे कहता है मेरी बात सबके लिए, लेकिन मैं आपसे कहता आप इतने बड़े बनो, इतने बड़े बनो कि क्या भरूच क्या गुजरात सारी दुनिया आपको देखे और उसकी टोपी पीछे गिरे आगे नहीं, आपको देखते देखते इतने ऊंचे हो जाओ कि पगड़ी पीछे गिरे, इतने ऊंचे बनो और आप बन सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय आत्मन बड़े प्यास, कभी किसी की निंदा मत करो, किसी की लालच न करो, अपनी मर्यादा में रहो, और उसके लिए पहली सीढ़ी है किसी का बुरा न सोचना, किसी की हिंसा न करना, तो अहिंसक बनो मन से, कुछ भी हो जाए। मैं तो यहां तक कहता कि कितने लोग हाथ में लकड़ी नहीं रखते लेकिन मन से कितना दूसरे को मारते मैं जानता हूं, हमारा मास्टर हाथ में लकड़ी रखता है लेकिन कितना अच्छा सिखाता है, बच्चों को अहिंसक बनाता है, नहीं गलती मत करो, तो मास्टर की तरह हाथ में लकड़ी रख करके बच्चों को सिखाइए, लेकिन लकड़ी बच्चों को सिखाने के लिए होनी चाहिए, किसी का अपमान करने के लिए नहीं, उसका भी उपयोग है। तो प्रथम ऊंचे उठने में पहला पाया हमारे ऋषियों ने कहा अहिंसा, फिर आया अस्ते, आखिर अहिंसा के बाद अस्ते क्यों आए, हम तो अहिंसक हो गए, ये पड़ोस से चोरी करना ये नहीं चोरी, ये शरीर किसका है, आप रोज आना आरती में बोलते हो तेरा तुझको सौंपू क्या लागे मेरा, हे परमात्मा मैं आपका हूं, और मंदिर के बाहर दस साल का जूता चोरी हो गया तो कहते मेरा जूता किधर गया, ले गया होगा कोई परमात्मा, काय को रोते। एक दूसरा परमात्मा जूते की दुकान रखा है, जाके खरीद लो, क्या कमी आप, क्या कमी आप, मनी का तो सर्कुलेशन होना चाहिए, ले गया कोई परमात्मा। लेकिन हमने देखा बस बिगड़ गए चौकीदार पर, तूने मेरे जूते का ध्यान नहीं रखा, उसने कहा दो रुपया देते तो ध्यान रखता, आपने दिए कुछ नहीं, क्या क्या, वो भी दो रुपए की बात कर, आप दो रुपया खर्च करना चाहते नहीं और जूता चला गया तो रोने लगे। आ तो बात कर, एक विचार दे रहा हूं, अस्तेय का क्या मतलब, हमें किसी का कुछ लेना नहीं है, लेकिन आपका चला जाए तो समझो परमात्मा ले गया, परमात्मा डबल देगा, इसलिए चिंता न करो, मत करो चिंता, वो देगा। आप एनर्जी की बात, पृथ्वी को एनर्जी माना, आप इतना गेहूं पृथ्वी को देते हो, देते हो, फिर इतना मिलता है, जिसको देना नहीं आता उसको कभी लेना भी नहीं आएगा, तो पहले देना सीखो। इतना गेहूं का अनाज दोगे तो पृथ्वी देगी, तो याद रखो। एक बार मेरे पास कोई आया, कोई बात किया, मैंने कहा बेटे तुझे जीना नहीं आता तो मुझे मरने के बाद क्या पूछता, मैं जीना सिखाता हूं, मरना नहीं सिखाता। कोई बात हुई थी कि स्वामी जी मैं तो मर जाऊंगा, मैंने कहा आश्रम जीने के लिए बनाया, किसी को मारने के लिए नहीं बनाया, अब मरने के लिए मुझसे क्या पूछना, जाके मर जा, अपना क्या फर्क पड़ा, आ जाएगा। मैंने कहा जा संभाल के फोटो, कभी पेपर में अच्छे काम से फोटो नहीं आए तो मरने पर तो आएगी, जा फोटो तो अच्छी आ जाएगी, मेरा मानने वाला, इसलिए थोड़ा सा इसका मैं ये आश्रम जीने के लिए, यहाँ जीना सीखना, यहाँ तैरना सीखना, डूबना नहीं सीखना, डूबने के लिए मेरी क्या जरूरत है, जा खुद एक बात करता। तो आप सहज रूप से चलो, इस सहज रूप बताता, आप बगीचे में जा रहे हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा, थोड़ी चोट लगी, क्या पेड़ से लड़ते हो, ये जगत भी एक पेड़ की तरह है, इसमें भी कोई लकड़ी कोई आदमी गिरा तो जैसे पेड़ की लकड़ी गिरने पर चोट लगने पर नहीं रोते हो, ऐसे रास्ते चलते जगत को पेड़ मानो, उसमें कोई लकड़ी है कमजोर है टूटी है गिरी है और उससे भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जब आपके मन में बदले की भावना आती है, आपके मन में क्रोध आता है, तो वैज्ञानिक कहते हैं जब तू किसी लंगड़े आदमी को देखता है, लूले आदमी को देखता है तो दया आती है, लूले लंगड़े पर दया आती है, तो जिनको क्रोध आता है, जो निंदा करते हैं, जो इस तरह से हैं, वो देखने में लूले लंगड़े नहीं है लेकिन मानसिक ढंग से है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो जैसे शरीर से जो हैंडीकैप्ड है उस पर दया खाते हो, तो कभी कोई इस तरह व्यवहार करे तो मानसिक रूप से विकलांग है उस पर भी दया खाए हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई क्रोध किया करेगा, वो मानसिक रूप से विकलांग है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, अब यह विज्ञान का। आप जगत में देखिए, मैं नदी में नहाने गया, एक बात कहता, नावड़ी आके टकराई तो मैं नावड़ी से नहीं लड़ा, लेकिन कोई आदमी टकरा जाए तो डूबा के आ जाऊं, ये क्यों कैसे, या विचार कर ये भावना क्यों आई, इस भावना के पीछे एक मनोविज्ञान। हम दूसरे का सुख नहीं देख सकते, खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे का सुख देख के दुखी है। किसी की अच्छी बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि मेरा चेला मंत्री बन गया तो दूसरा क्या कहता, महाराज वो तो शराब पिला के बना था, मैंने कहा तू क्यों नहीं पिला दिया, मैं प्लस करूंगा वो माइनस बोले, मैं कहूंगा कि मैं अपने शिष्य के यहां गिलास भर के दूध पिया, चेला कहता महाराज वो तो छोटा गिलास था, वो छोटा गिलास देखता, मैं कहता भरा गिलास, यही मैं आप हर चीज में प्लस देखो पॉजिटिव देखो, पीड़ा को भी पॉजिटिव मानो, कैकेयी को भी मानो, जिसकी जिंदगी में कैकेयी रावण विरोध नहीं आया वो कुछ नहीं बन सका, इसलिए कभी वो परमात्मा आपका कैकेयी के रूप में रावण रूप भेजता है तो वो परमात्मा आपको कुछ बनाना चाहता है, बिना पगार दिए उसने किसी को बना दिया है आपके विरोध में, पगार आपको नहीं देनी पड़ती। हमारी माँ मुझे प्यार करती है और थप्पड़ भी लगाती है। क्यों लगाती है? कोई सजा होगी, कोई गलती किया, नहीं आगे बढ़ रहे, नहीं उठ रहे, इसको समझ लो। रोजाना मैं 5 बजे उठता हूँ, माँ बड़े प्यार से गले लगाती, दूध पिलाती, स्कूल भेजती। एक दिन आधे घंटे लेट हो गया, माँ कहती बेटा उठो उठो, मैं कहा नहीं उठो, माँ ने थप्पड़ लगाया। क्यों थप्पड़ लगाया? माँ ने थप्पड़ लगाया मैं जागूं, तैयार होकर स्कूल जाऊं। इसलिए याद रखो, परमेश्वर भी पीड़ा से थप्पड़ लगाता है। आप जहां हो वहां मत रहो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये विज्ञान खुद कहता है। यहाँ पर कोई चीज है, जब चोट दोगे तो आगे आगे, ये इस चीज यहाँ की चीज यहाँ तक लाने के लिए 4 बार चोट देनी पड़ेगी, एक बार ही चोट दोगे। इसलिए हर चोट आपको आगे बढ़ा रही है, मान के चलो, हर पीड़ा आपको आगे बढ़ा रही है। खुद विज्ञान कहता खुद आगे। इसलिए आप भगवान की बनाई हुई चीज की निंदा क्यों करते हो? होगा वो अपनी जगह, आप होते कौन है किसी की निंदा करने वाले, किसी का बुरा करने, और उसमें आप अपना बुरा, आप अपने आप से चोरी कर रहे। कैसे चोरी कर रहे? मैं अपना उदाहरण दूं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक उदाहरण। किसी ने मुझे कहा कि मनीषानंद मूर्ख है, तो मैंने कहा उसको बुला लाओ, उसको बुला लाओ। आया, मैंने कहा भाई तूने मुझे मूर्ख कहा? कहा भाई मैंने कब कहा था? या तो मैं झूठा पढ़ूं या दो में से एक तो झूठे पड़े। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो कि आपको विटनेस देना पड़े, साक्षी? कितने लोग मुझे कहते महाराज जी, एक ऑफिसर मेरे पास आए, कोई बात हुई, कहते महाराज मेरे ड्राइवर से पूछ लो। मैंने कहा ड्राइवर को 500 रुपया दे के मिला लिया होगा तो क्या होगा? मैं आपका विश्वास करता हूं, आप अपना विश्वास करते, आप क्यों फंसते हैं बातों? एक जगह बड़ी सुंदर बात आती, ऑफिसर ने कहा कि देखो मेरी लास्ट वार्निंग है, ये तो एक समझ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। तो किसी ने कहा, कहा भाई तू काम ऐसा क्यों करना करता है कि तुझे वार्निंग देनी पड़ती है? मैं कहता हूं आप काम ऐसा क्यों करते हैं जो बोलना पड़ता है, फंसना पड़ता है? क्यों ऐसा बोलते? आपने बोल दिया किसी खिलाफ, बात एक बार बाहर गई कहीं कभी पहुंचेगी, फिर आप फंसेंगे। क्यों फंसते हो अपने जंजाल में? तौल करके बोलो। अरे आप बाजार जाते हो तो बटाटा तौल कर लेते हो और बात बिना तौले बोल देते हो। सोनी की दुकान पे जाओगे तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। तो ये जबान बोल दी, बस इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि कितने लोग मेरे पास आए बोल बोल के दुखी हो गए, जैसे बड़े प्यास दोपती ने कह दिया, फिर क्या हुआ? ये जबान के आप मालिक हो, याद रखो। और ये अपने से चोरी कर रहे हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, यही तो चोरी। अपरिग्रह, तीसरा अपरिग्रह आया, इसका मतलब नहीं कि गरीब हो जाओ, इसका मतलब नहीं कमाओ, इसका मतलब यह है खूब कमाओ लेकिन शरीर को ठीक रखो, बाकी कमाई समाज की समृद्धि में लगाओ। समाज को आगे, समाज में पहले आपका पुत्र आएगा, पुत्री आएगी, पहले आपका घर आएगा, ये भी समाज है। आपके पुत्र पुत्री समाज है, उनको भीख न मांगनी पड़े। अब परिग्रह का लोगों ने अर्थ लगा लिया, बस अब खूब कमाओ, पहले आपका घर आपका समाज है। आपकी पत्नी दुखी तो नहीं, आपके बच्चे तो दुखी नहीं, आपके पुत्री तो दुखी नहीं, तो अपरिग्रह खूब कमाओ, अपने घर को परिवार को ऊंचे उठाने में लगाओ। अब आपको बताऊं कैसे? कई बार लोग मेरे पास आए, महाराज जी हमारे टाउन में से एक लड़का अमरीका गया, उसके पिता ने इतना खर्च किया और वो तो वहीं अमेरिकन लड़की शादी करके रह गया, आया नहीं, तो मुझे भी अपने लड़के के लिए भेजना है, ऐसा एक रास्ता मिला है, तो आप ये बताइए कि शादी करके रह तो नहीं जाएगा, नहीं तो काय को 15 लाख खर्च करना, मैं ही खर्च करूं। अब क्या है, जा विचार, आपने कमाया है, लड़के को लायक बनाओ, लेकिन फिर भी आप अपना देख रहे हैं, जा विचार। अपरिग्रह क्या? खूब कमाओ, पहले परिवार को समृद्ध बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, वही लायक बच्चे फिर समाज को आगे बढ़ा। इसलिए पहले घर को ठीक रखो, केवल अपने ऊपर ना करो। एक जगह की बात बताएं, लड़के ने कहा स्वामी जी पिताजी शराब बहुत पीते, मैं बुलाया। मैंने कहा आप शराब क्यों पीते? कहे महाराज जोशी ने कहा तुम एक साल जिंदा रहोगे तो मैं इतना कमाया। तो मैं कहता एक साल में कितना पीऊंगा? 2 लाख का पीऊंगा, बहुत कमाया। मैंने कहा जोशी को बुला लाओ, अभी तो 15 साल जिंदा रहोगे। कहा फिर तो मेरा घर कंगाल बन जाएगा। मैंने कहा जोशी को बुलाओ। एक बात कहता, कैसी बातें आती? तो आप अच्छे काम में 2 लाख नहीं खर्च कर सकते, शराब नहीं कर सकते। अब परिग्रह कर एक एक को खूब कमाओ, लेकिन अपने परिवार को, परिवार से बचे तो पड़ोसी को, बचे तो समाज को, ये अपरिग्रह करते। अहिंसा से प्रेरणा सत्य, सत्य का पालन सभी करते। ब्रह्मचर्य जो आचरण आपको शक्ति दे। ऋषि मुनि भी ब्रह्मचर्य पालन करके परम ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जो आपको विशेष भूमिका मैंने दी उसमें अहिंसा अस्ते अपरिग्रह की खास बात है। सत्य तो आप जन्म से लेकर आए, ब्रह्मचर्य संयम से रहिए, ये आपके अंदर की शुद्धि है। अंदर से जब शुद्ध हो गए तो बाहर की भी शुद्धि की जरूरत है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर शरण, हर तरह से शरीर को पवित्र रखना। आपके हाथ में दुर्गंध है तो पड़ोसी को जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि शरीर मेरा है। आप जो कर्म करते उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। इसलिए हर तरह से सर्वभूते मनसा वाचा, मन वचन कर्म से अपने को पवित्र रखो। संतोष करते नहीं कि बैठे रहो, जो कुछ आज प्राप्त है उसमें संतोष रखो और आगे बढ़ो। अगर असंतोष होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। प्राप्त परिस्थिति में संतोष रख करके आगे बढ़ना। संतोष नहीं कि दलदल में फंसाऊं बस ठीक हूं, नहीं, जो कुछ आज है उसे लेकर आगे बढ़ो। जो कुछ आपके पास है लेकर आगे बढ़ो, ये संतोष है। तप, बिना तपस्या के कोई भी कर्म करोगे बिना तप के कुछ नहीं होगा। जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तप जरूरी है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। आप घर में एक चाय बनाते हैं, घर में चावल बनाते हैं, जो कुछ भी आप बनाते हैं करते हैं, जा विचार कीजिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पुराना हिसाब लें कि नया, आपके पास गैस होनी चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए, तपेली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, फिर उसको गर्म करेंगे। तो तब करते हैं एक वह व्यवस्था जिसमें तकलीफ आती है लेकिन वो आपको फायदा देते। मैं तकलीफ उठाना नहीं चाहता, जैसे शुरू में कहा। तो बिना तप के तपो ब्रह्म, ब्रह्म नाम शक्ति। बिना तप के, अरे घर में बटाटा भी बनाते हो ना, बटाटा भी गर्म पानी में बनता है, एक भजिया भी गर्म तेल या घी में बनता है। तो थोड़ा समझ करके तप करो। तप है समझ करके स्नान करना। आज एकादशी है तो समझ के कर रहे हैं, और जिसके घर में खाने के लिए नहीं वो तो रोज एकादशी हो रही। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का रोज अध्ययन कर। लेकिन स्व अपनी आत्मा का, मेरी आत्मा किधर जा रही है? ये जो पहले सब बता दिया, मेरी आत्मा में अहिंसा है कि हिंसा है? मैं किधर ईमानदारी से जा रहा हूं कि चोरी से? मैं सत की तरफ जा रहा हूं कि असत की तरफ? मेरे में संतोष है क्या असंतोष है? मैं तप कर रहा हूं कि नहीं? इस तरह रोज आना, अपना निरीक्षण करो, रोज का रोज डायरी लिखो कि मैं ऊपर जा रहा हूं कि नीचे जा रहा हूं। स्वाध्याय और फिर ईश्वर शरणागति, ये यम नियम की जो बात है अष्टांग योग की है। लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो आपकी तैयारी है। मेरे प्रिय आत्मन, अगर आप इतनी तैयारी कर लें तो जैसे आपके घर में दीपक भी है, बाती भी है, तेल है, लेकिन अलग अलग इकट्ठे होंगे तो वहां प्रकाश को लाने में तनिक भी देर नहीं लगे। जिस तरह मैं कह रहा हूं, जो अभी तक जो भी आपके सामने बातें रखा, इसको आप स्वीकार करें, इसको आप माने, तो बड़े प्यार से कहता हूं किसी भी गुरु को, जो भी अच्छे गुरु हैं, एक क्षण में आपको आत्मज्ञान करना। वो तो आप हैं ही, लेकिन आप उसे जलाने नहीं चाहते, जलाए तो कुछ क्या पता ही नहीं है। तो मेरे प्रिय आत्मन, आप सब हर साल अपने गुरु, अपने जिसके पास शुभचिंता शुभचिंतक हो, हमारे सब अच्छे आए हैं, सब अहमदाबाद से नाम लूंगा बहुत होगा, पंजाब से आए, अभी हम लोग पंजाब गए, दिल्ली गए, हरिद्वार गए, हमारे गुजरात से 30-32 थे, सब अच्छे अच्छे लोग थे, फिर कुछ दिल्ली वाले गए, तो मैं जो पंजाब के लोग आए हैं, तो हमारे जो साथ में गए थे वो तो इतनी आपकी प्रशंसा करते हैं कि खूब आनंद। पंजाब की, दिल्ली की भी बहुत प्रशंसा होती है, जगदीश ने, हरीश ने, उनके पिता ने जो किया, अशोक जी ने किया, पूरे हरिनगर चनकपुरी ने किया, उसके हरिद्वार में हमारे महाराज जी ने किया, तो अभी हम गए थे। तो मैं यही चाहूंगा, यहाँ से लोग जब जाते हैं तो आपका गुण देख के प्रशंसा, और ये दिल्ली वाले, हरिद्वार वाले और पंजाब वाले आपकी प्रशंसा करते हैं, तो मैं यही चाहूंगा, चाहे मेरा शुभचिंतक से पंजाब का हो कि महाराष्ट्र का हो कि गुजरात का हो कि मध्य प्रदेश का हो कि राजस्थान का, लेकिन दोस्त से मिले तो एक दूसरे को सुगंध दें, दुर्गंध नहीं दें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की निंदा न करें, एक दूसरे को मदद रूप बने, ब्लेसिंग बने, आशीर्वाद बने। और आज के इस प्रसंग में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, प्रोफेसर, डॉक्टर्स हैं, कमिश्नर हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, बम्बई से भी आए हैं, दिल्ली से भी, पंजाब से भी, मध्य प्रदेश से, अहमदाबाद से, सब अच्छे, क्योंकि सबका नाम लूँ तो क्या वही बताऊँ ना, अभी आप इतने बड़े नहीं हो ना, स्वामी जी ने करोड़पति का नाम लिया, मेरा नहीं लिया, है कि नहीं? तो मेरे पर उंगली ना उठे, इस बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जहाँ मैं दिल्ली में रहा, जिस भगवान दास ने मुझे बसाया, वो भी आते हैं, हर साल आते हैं, जगदीश हैं, हरीश हैं, अशोक जी हैं, सब हैं, हमारे हैं ही बड़े प्यारे छबील दास जी हैं, आप हैं, मास्टर साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं, अभी नाम लिया ना, अनिल जी हैं, हरिप्रसाद जी हैं, मनीष, मेरे नाम के हैं, मनीष दवे हैं, थोड़ा सा अंग्रेजों की बात बता दें, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से ब्राह्मणों का नाम, आप चतुर्वेदी थे, अंग्रेजों ने आपको चौबे बना दिया, आप त्रिवेदी थे, तीन वेदों ज्ञाता थे, तो आपको तिवारी बना दिया, और आप दो वेदों ज्ञाता थे, द्विवेदी थे, दवे बना दिया, अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली कि जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं इनको चतुर चार वेदों वालों को चौबे बना दो, है कि नहीं, तीन वेद वालों को तिवारी बना दो। तो इसलिए यहाँ जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, आपको बड़े प्यार करता हूँ, तो मनीष दवे जी, मनीष द्विवेदी, जो दो वेदों का ज्ञाता दवे है, और सबसे बड़ी बात ये बता दूँ, आप मेरे नाम के हैं, तो मेरे नाम वाले तो बड़े माइंड वाले होंगे, कोई ऐसे कमजोर तो होंगे नहीं, जहाँ हरि प्रसाद है, हरि का ही प्रसाद है, जहाँ अनिल हैं, जहाँ अम्बालाल साहब हैं, कमर हैं, मैं डॉक्टर सैनी हैं, सभी हैं, जगदीश हैं, हरीश हैं, आप हैं, अशोक, पूरा हरिनगर है, अच्छे अच्छे लोग सब हैं, है ये सारे जो अच्छे लोग हैं, मैं ये मेरा पूरा परिवार है, और मैं अपने परिवार से कहूँगा कि गुलाब के फूल की सुगंध बन करके पूरे विश्व में छा जाओ, लेकिन याद रखो गुलाब की सुगंध के पीछे भी कांटे होते हैं, पहले पीड़ा को, कांटों को स्वीकार करोगे तो गुलाब का फूल बनकर पूरी दुनिया में सुगंध दोगे। मैं परमात्मा से आज अपने जन पर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी शिष्य पीड़ा को स्वीकार करके गुलाब के फूल की सुगंध की तरह पूरे विश्व में फैल जाएं, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आए
बापू भी आए,
हाँ बुला लिया,
अंदर अंदर का व्यवस्था
है। एक चीज और, आज की जो पूरी व्यवस्था है, नाम तो लिखा हुआ है, हमारी बेटी है 25-30 साल से है, उनके पति हमारे शिष्य हैं, तो आज की जो पूरी ये 14 जनवरी 2006 की जो पूरी व्यवस्था है, ये है सरोज बहन धनंजय जानी, अंग्रेजों ने ज्ञानी से जानी बना दिया, ज्ञानी से जानी बना दिया, तो भाई ब्राह्मण है, कोई जानी और ना समझ लेना, है कि नहीं, ऐसा है, तो सबसे बड़ी बात यह है। और जैसा कि आप कैसेट में सुने, फिर कह दूं, अगले साल की 2007 की जो जन्म दिवस है वो 3 दिन का है, जब जब गुरु पूनम आएगी उस समय पूरी व्यवस्था बताऊंगा। और 2006 की जो गुरु पूनम है वो अंकलेश्वर निवासी चंद्रेश रसिकलाल गांधी की तरफ से है, ये गुरु पूनम जो 11 जुलाई को आएगी चंदेश की तरफ से। ओम शांति शांति शांति।